संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में।
चार पुरुषार्थों की चर्चा जैन दर्शन में आती है, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। तो मोक्ष पुरुषार्थ किन के है? सिद्ध भगवान के। वे मोक्ष में पहुंच गए ना, तो वो दूसरों का क्या करते हैं? कुछ नहीं करते ना, अपने जैन दर्शन के हिसाब से दूसरों का कुछ भी नहीं करते ना, तो उनके मोक्ष पुरुषार्थ में क्या दिक्कत है? तो हम दूसरों का कुछ करेंगे तो हमारा पुरुषार्थ कायम रहेगा, और दूसरों का हम कुछ नहीं कर सकेंगे तो हमारा पुरुषार्थ समाप्त हो जाएगा। ये बात कहां से लाए? बोलो, तो क्या करते हैं सिद्ध भगवान? कि सहज ज्ञाता दृष्टा है, लोकालोक को उनके ज्ञान में झलकता है ना। सकल गेय ज्ञायक तदपि न जानंद रसलीन, सूर्य नेन्द्र जय बंत अरिदज रहस्यन। तो उनके मोक्ष पुरुषार्थ कायम है ना, अब पर का रंत मात्र नहीं करते। पर्याय कहते हैं प्रत्येक द्रव्य की पर्याय, जो कुछ होना है वो स्वयं से होगी, कोई दूसरा द्रव्य उसमें कुछ भी करता धरता नहीं है। ऐसा मानने से मोक्ष पुरुषार्थ का लोप कैसे हो जाएगा? बताओ। ठीक है, पर में कुछ नहीं करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन अपना में तो होना चाहिए ना, अपना तो परिवर्तन हम कर ही सके ना। तो अरहंत भगवान के अनंत वीर प्रकट हो गया है, अनंत पुरुषार्थ कहते हैं ना उसी को, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। तो अनंत वीर का नाम ही तो अनंत पुरुषार्थ है ना, क्यों? तो वो अरहंत भगवान जिनने चार घातिया कर्मों का अभाव करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है, और चार अघातिया कर्म अभी बाकी है, और तो वे चार अघातिया कर्मों में कुछ कर दे रहे ना जल्दी, कि जब उनका काल पूरा होगा तब वे अपने आप समाप्त होंगे, तब वे मोक्ष जाएंगे क्या? अथवा अपनी जो मोक्ष पर्याय है, अब तो अनंत वीर प्रकट हो गया है, तो थोड़ी पहले ले आवे, एक घंटे दो घंटे पहले। केवल ज्ञान होने के बाद आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष कम एक कोर पूरब तक क्यों अरहंत अवस्था में रहे? तो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था, अनंत वीर प्रकट हुआ और मोक्ष तो चाहते थे, सारा पुरुषार्थ ही उन्होंने मोक्ष के लिए किया था, क्या कमी रह गई थी? दूसरे समय में ही मोक्ष हो जाता, अपनी पर्याय भी नहीं ला पाए। मोक्ष पर्याय लाते तो सिद्ध पर्याय, एक कोरी 1000 वर्ष कम एक कोरी पूरब की जो अरहंत पर्याय थी, उसे भी निकाल के फेंकना पड़ता, क्योंकि फिर बाद में मोक्ष की बात तो आती नहीं। तो उनके पुरुषार्थ के लोप की समस्या हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई? अरहंत भगवान में क्या पुरुषार्थ रहा बोलो? और हम अरहंत तो सिद्ध को अनंत वीर का धनी तो मानते ही हैं, अतुल्य बल का धनी भी और अनंत वीर का धनी भी मानते हैं, उनमें तो कोई पुरुषार्थ की कमी का सवाल नहीं है। भगवान आदिनाथ से लेके भगवान महावीर तक के जितने भी पूरब भव के रिश्तेदार होंगे, अनंत भवों में अनंत माँ बाप होंगे, भाई बहन होंगे, बाल बच्चे होंगे, पत्नियां होंगी, वे कहीं ना कहीं संसार में होंगे ना, उससे मोक्ष भी चले गए होंगे, बहुत से संसार में भी रखड़ रहे होंगे। मारी जैसे नरक में भी थे ना आदिनाथ के, सभी मोक्ष में चले गए थे, वे नरक में थे, और उनके केवल ज्ञान में वो सब दिखाई दे रहे होंगे, क्यों श्री राम जी? क्या नहीं दिखाई दे रहे होंगे? सकल गेय के ज्ञायक है ना वे, तो वे उन्हें निकाल ला दे वहां से, उनका कल्याण कर दे रहे। यदि वे किसी का कल्याण कर सकते हैं करते हैं, क्यों हमारा कल्याण उनकी भक्ति से हो जाएगा? यदि हमारा कल्याण कर दे रहे तो उनके ज्ञान से तो कुछ छुपा नहीं हो सकता, किसी भक्त के हमें उनके रिश्तेदार हों, क्यों? आनंद वीर के धनी उनके पुरुषार्थ के लोप का तेरे को ख्याल में नहीं आता, और आज क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा हुई तो तेरे पुरुषार्थ का लोप नजर आने लगा। पहले तुमने ये बात नहीं पढ़ी थी? करण सिद्ध भगवान को सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ जानते हैं प्राणी क्यों। और एक समय पहले भी वो मुख जाते नहीं है, जब होता है आयु पूरी तभी जाते हैं क्यों। ये सब बातें होते हुए तुम्हें क्यों नहीं लगा कि पुरुषार्थ का लोप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक बात दूसरों की रहती है तो हमारी समझ में कुछ नहीं आता है, तो हमारे माथे पे आती है तो उसकी 50 डिफिकल्टी हमें समझ में आने लगती है। तुम अभी अनंत भगवान की कर्म पर्याय क्रमबद्ध कहो, किसी को दिक्कत नहीं है। दूसरे जीवियों की कहो, किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तो ये है कि हमारी भी है, यहां हमें प्रश्न खड़ा होता है। और जिन पर्यायों में हम कुछ भी करना चाहते हैं कहो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां हम अपना हस्तक्षेप समझते हैं जब उस पर आंच आती है तो सबसे बड़ी दिक्कत खड़ी। तो महिपाल जी, मैं एक प्रश्न आपसे पूछूं कि एक देश ऐसा समृद्ध हो जाए कि इसमें बच्चा बच्चा करोड़पति हो जाए, रहेगा कि नहीं? चलो आपकी क्या है, अमेरिका से भी बढ़िया हो जाए, हर आदमी को कम से कम 1,00,000 रुपए महीने की इनकम हो जाए प्रत्येक आदमी को, रमेश जी ठीक रहेगा कि नहीं? बहुत बढ़िया रहेगा, इससे अच्छा तो और क्या होगा। तब तुम्हें तो कोई बर्तन मिलने वाला नहीं मिलेगा, तुम्हारी पत्नी को या तुम्हें स्वयं बर्तन धोने पड़ेंगे, बोलो। क्योंकि जिसको 1,00,000 रुपए महीने की इनकम होगी वो दूसरे घर में बर्तन क्यों धोएगा? कपड़े धोने वाला नहीं मिलेगा कोई, तो तुम्हारे यहां सुबह सफाई वाला नहीं आएगा कोई, बोलो। मंजूर है ना? हम तुम भाई जैसी हालत तुम्हारी भी हो जाएगी, अपने घर की घास खुद ही काटनी पड़ेगी, क्यों तैयार हो ना? नहीं, हमें तो गरीब ही दे सकता हम पे कोई असर है? ऐसी समृद्धि हमें इस देश में रेलवे स्टेशन पर कोई कुली नहीं मिलेगा। सोच लो केवलचंद जी, इतनी सामान लेके ले जाना पड़ेगा जो अपने कंधे पे ले जा सको। केवलचंद जी ठीक नहीं है? तो पूरी समृद्धि का अर्थ आज तक आपके ख्याल में नहीं आया? वो तो जब प्रैक्टिकल होता है तब समझ में आता है उसका जो डिफेक्ट है। पहले तो कल्पना लोक में अच्छी अच्छी बातें लगती हैं, जब हम पर प्रभाव आने लगता है हमारा वो हमारे नौकर चाकर भी करोड़पति हो जाएंगे तो हमने सोची नहीं थी। सब में हम उन्हें शामिल ही नहीं करते थे, सब में तो हमें अपने को ही शामिल किया था। बोलो मनंदलाल जी, बुझा सब तो तुम्हारे महाविद्यालय के लिए एक भी विद्यार्थी नहीं मिलेगा। हर को फिर आएंगे जो अनपेड भर्ती होने के लिए। फिर पादमी जी, आप कितने कहो कि हमको इतना दान दे रहे हैं फिर कोई लेने वाला नहीं मिलेगा। तो तुम अपने बच्चे को पढ़ाओ, हम अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे। हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर पुण्य कमाने का अवसर चला जाएगा सब। इफेक्ट पड़ेगा हमने सोचा ही नहीं था। ऐसे ही जैन दर्शन में जो सिद्धांतों का वर्णन है, अकेले क्रमबद्ध पर्याय को छोड़ दो और एक भी सिद्धांत पर ध्यान दिया होता तो सबके ही परिणाम ये होता कि आपको पुरुषार्थ का लोप नजर आता। लेकिन नहीं आया, इसका मतलब कोई भी सिद्धांत आपने गहराई से समझाई नहीं, उस पर विचार किया ही नहीं। जैन दर्शन कर्तावादी दर्शन नहीं है, वेद को दूसरे में कर्ता नहीं मानता है। इस पर ही विचार कर लिया होता तो यही परिणाम आता कि नहीं आता? बोलो पाटन जी साहब, भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलक जाता है। फिर यही एक दफे ध्यान में आ गई होती बात तो भी यही प्रश्न खड़ा होना चाहिए था ना। इसका मतलब हमने सब ऊपर ऊपर से ही पढ़ा था, सर्वज्ञता की बात भी, अकर्तावाद की बात भी, पुण्य पाप की बात भी। जाने दो और बातों को, हर आदमी अपने पुण्य पाप के उदय के अनुसार सुखी दुखी होता है, तो फिर तू कौन होता है बीच में? जब मैं अपने पुण्य पाप के उदय के अनुसार ही होऊंगा तो तब भी तो जो अकर्तावाद खड़ा हो जाता तब भी तो प्रसाद में तुम्हारी चोट लगती ना। तो सब बातें नहीं थी शास्त्र में क्या? हमने नहीं पढ़ी थी क्या? तो 6 महीना और 8 महीने में 600 जी मोक्ष जाते हमने नहीं पढ़ा था क्या? क्या आज की नई बात है क्या? मेरे कहने का अर्थ है कि सचमुच हमने जिनवाणी को गंभीरता से पढ़ा ही नहीं। क्यों? जब ये बात कही गई कि सब कुछ नक्की है, एक एक समय की बात, तब हमारे हजारों प्रश्न खड़े हो गए। और अभी भी मैं एक कहता हूं चैलेंज लेकर के, छोड़ दो क्रमबद्ध पर्याय को एक तरफ, अब बाकी जो जिनवाणी में वर्णन है उसे एक जगह पद्म पुराण ढंग से पढ़ लो, आदि पुराण पढ़ लो, कोई शास्त्र पढ़ के देख लो, अब फिर तुम्हारा कोई पुरुषार्थ खड़ा रहता है कि जाता है। एक पॉइंट। अब दूसरा, तुम्हें पुरुषार्थ कहते किसे हैं? अर्थ पुरुषार्थ क्या है? करोड़ रुपए इकट्ठे करना, क्या नाम अर्थ पुरुषार्थ है, काम पुरुषार्थ क्या है, बाल बच्चे पैदा करना, क्या है काम पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ का स्वरूप क्या है, मैं आपसे पूछता हूं। अगर सुनो, 5 बजे सुबह घूमने जा रहे भगत राम जी आप, वहां देखा तो 10,000 के नोटों की एक गड्डी पड़ी थी, चारों तरफ निगाह डाल के देखा तो 1-1 किलोमीटर तक कोई आदमी दिखाई नहीं दिया, आप अकेले हो और कोई नहीं है। बोलो, उन नोटों की गड्डी को उठा लेना पुरुषार्थ है कि नहीं उठाना पुरुषार्थ है, मुझे बताओ। कि उठा लेना तो सब लोगों की सहज वृत्ति है, रिक्शे वाला कोई भी होगा, धोबी नाई कोई भी, क्यों गुजराल से लेकर कोई भी व्यक्ति होगा तो चुपचाप उठा के रख लेना जेब में, ये तो सहज वृत्ति है, इसमें पुरुषार्थ का क्या काम। पुरुषार्थ तो उस लोभ को जीतने में है कि नो डेंजर, तो भी मुझे इससे क्या लेना देना। जो अंदर लोभ पैदा हुआ है उस लोभ को जीतना वो पुरुषार्थ है कि उसको उठा लेना वो पुरुषार्थ है, क्यों विचार करो। सेठ और सेठानी मंदिर जा रहे थे, आगे आगे सेठ जी और पीछे पीछे सेठानी, तो रास्ते में कोहिनूर हीरा पड़ा दिख गया सेठ जी को, तो सेठ जी वहीं देखते ही रह गए। अब उनके मन में एक विकल्प आया कि सेठानी की निगाह पड़ गई इस पर तो ये उठाए बिना रहेगी नहीं, कैसे कितना ही मना करो एक घर में चोरी का हीरा आए बिना रहेगा नहीं, जा तो रहे थे मंदिर और ये पाप हो जाएगा आज, इसलिए ऐसा करो कि सेठानी की निगाह में हीरा पे पढ़े ही नहीं, तो चुपचाप पैर से और अगल बगल की मिट्टी उठाकर सेठ जी ने उस हीरे पर डाल दी, ढक दिया कि दिखे ही नहीं। दूर से सेठानी देख रही थी कि सेठ जी कुछ कर रहे हैं, मंदिर पर जा रहे थे, यहां क्या धंधा करने लग गए, ये मिट्टी का ढेर क्यों लगाने लग गए बच्चों जैसा, क्यों। तो सेठानी उधर आई और उस मिट्टी के ढेर में एक लात की ठोकर मारी तो नीचे चमकता हुआ कोहनी हीरा दूर जा पड़ा, तो एकदम बोली, क्या धूल पर धूल डाल रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है क्या। अरे हीरा भी तो मिट्टी धूल ही है, उस धूल पे धूल डालने की क्या जरूरत है, क्यों ये क्यों किया तुमने ऐसा, कि मैं सोच रहा था कि कहीं तेरा मन लुभा गया तो आज मुश्किल हो जाएगी, आज की पूजा बिगड़ जाएगी, इसलिए मैंने डाला। कि तुम्हारी दृष्टि में ये हीरा था और ये धूल थी, तुमने हीरे पे धूल डाली, लेकिन मेरी दृष्टि में तो दोनों ही धूल हैं, क्यों। पुरुषार्थ क्या है बोलो, उसको उठा लेना ये पुरुषार्थ है कि नहीं उठाना ये पुरुषार्थ है। तो मैं पूछता हूं, पैसा कमाना पुरुषार्थ है कि नहीं कमाना पुरुषार्थ है, बताओ। ये सारे इस मूल जगत में पैसा कमाने को पुरुषार्थ मान रखा, जो बिल्कुल पुण्य का फल है, तेरे कमाने से कुछ होता ही नहीं है, आता ही नहीं है, क्यों। वर्तमान पुरुषार्थ का फल नहीं है ना, बिल्कुल पूर्व पुण्य का ही फल है। गुरुदेव तो बोला कहते अपनी तो हिम्मत नहीं है, लेकिन उन्हीं की बात रिपीट तो कर सकते हैं ना, क्यों। तो ऐसे लोग हैं जिन्हें काला अक्षर भैंस बराबर हुकुमचंद सेठ था ना, तो पूरा हुकुमचंद हस्तक्षर नहीं कर पाता था, मात्रा लगाना नहीं आती थी, तो हु का हा का मा चा और दा बिंदी गायब, हा का मा चा दा चंद नहीं चंद, बस ऐसे साइन करता था। और कितना पैसा था आपको मालूम है, क्यों। दिगंबर जैन समाज का जैन ही समाज का समझ लो सम्राट था, बोलो। और बड़े बड़े पढ़े लिखे अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग उसका नौकरी पे थे कि नहीं थे। पैसा पुण्य से आता है कि कमाने से आता है। और उनके लड़के और उन्हीं के क्यों सबके बड़ी बड़ी डिग्रियां आएंगे में अमेरिका इंग्लैंड से लेकर के बैठे हैं, जिनके मैंने ऐसे नाम सुने हैं, यानी हुकुमचंद सेठ जैसे ही सही, एक की बात नहीं करता हूं, उनको अमेरिका में नौकरी करते देखा है, और हिंदुस्तान में देखा नहीं है मैंने, कोई इंजीनियर बन गया कोई बन गया और वहां नौकरी करते, हम सोच भी नहीं सकते थे कि दूसरी पीढ़ी में तीसरी पीढ़ी में आते आते, क्यों है? क्यों कैसे होता है? और पढ़े लिखे, उनसे सौ गुने पढ़े लिखे, कैसे होता है? तो क्या है अर्थ पुरुषार्थ बोलो? धूल का ढेर इकट्ठा हो जाना अर्थ पुरुषार्थ है? काम पुरुषार्थ क्या है? इसके लिए भी मैं एक उदाहरण देता हूं कि आज सुबह 5 बजे घूमने जा रहे हैं, कल रात के 12 बजे घूमने जा रहे हैं, और एक बिल्कुल सुंदर देवांगना जैसी लड़की दूर से दिखाई दी और वो आप पर रींझ गई और आप पर एकदम लट्टू हो गई, पूरी तरह समर्पित होने के लिए तैयार है, अपनी तरफ से ऑफर दे रही है, तो उसके ऑफर को स्वीकार कर लेना काम पुरुषार्थ है? तो उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देखना, बोलो, उसका नाम पुरुषार्थ है? मैं आपसे पूछता हूं, सुदर्शन सेठ पर रानी का ऑफर आया, उस ऑफर को स्वीकार कर लेना सुदर्शन सेठ का काम पुरुषार्थ था? तो भले ही नपुंसक घोषित हो जाऊं, लेकिन उसे ठुकरा देना और बदले में फांसी पर चढ़ना पड़े तो भी उसे ठुकरा देना, एक काम पुरुषार्थ है। क्या है काम पुरुषार्थ बोलो? हमने पुरुषार्थ की व्याख्या ही गलत समझ रखी है। एक दिन में बनारसी दास को ही पढ़ लेते नाटक समय सार में, खीर को खजानो ताए मूरख अरथ कहे, क्या ये धूल मिट्टी का खजाना, सोने चांदी का खजाना, हीरे जवाहरात का खजाना, इसको अर्थ पुरुषार्थ कौन कहते हैं? राजकुमार जी, मूरख ऐसा लिखते हैं, खे को खजानो ताए मूरख अर्थ कहे, ज्ञानी अर्थ कहे अरे द्रिव्य दर साऊ को। अपना जो त्रिकाली ध्रुव द्रिव्य, द्रिव्य दृष्टि वाला द्रिव्य, उसके देखने का नाम अर्थ पुरुषार्थ है, ये ज्ञानी कहते हैं। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का दर्शन हुआ, सम्य दर्शन हुआ ना, तो वो कौन सा पुरुषार्थ हुआ? ज्ञानी अर्थ कहे द्रव्य दर साऊ को, दंपति के भोग ताको मूरख तो काम कहे, ज्ञानी काम कहे अभिलाष चित्त चाऊ को। क्या मतलब हुआ इसका? अभिलाष चित्त चाऊ क्या होता है? चित्त में जो अभिलाषा है पर पदार्थों की, उसके त्याग को, चाऊ माने त्याग, अभिलाष चित्त चाऊ को, चित्त की जो अभिलाषा है, इच्छा निरोधा, उसके त्याग का नाम काम पुरुषार्थ है। ज्ञानी तो इसे काम पुरुषार्थ कहते हैं। और है अंत में लिखा अज्ञान, वो सिद्ध सुला में पहुंच जाना, उसको अज्ञानी मोक्ष कहते हैं। और ज्ञानी मोक्ष कहें एक बंध के अभाव को, बंध का अभाव हो जाने ज्ञानी तो उसे मोक्ष कहते हैं। सिद्ध सलाह में पहुंच जाना थोड़ी मोक्ष है, वहां तो निगोदिया भी रहते हैं, मालूम आपको? जहां अरहंत सिद्ध भगवान रहते हैं वहीं के बीच में निगोदिया भी रहते हैं, उस जगह में पहुंच जाने से कोई मोक्ष में थोड़ी पहुंच गए। सिद्ध वहां अनंत सुखी हैं और वहीं रहने वाले निगोदिया अनंत दुखी है। ऐसे धर्मदेव का है, किसी तुम पुरुषार्थ का लोप हो जाएगा, पुरुषार्थ का लोप हो जाएगा, तो पहले पुरुषार्थ कहते किसे हैं पहले तू इसका तो विचार कर, पहले नक्की कर पुरुषार्थ किसे कहते हैं। क्यों? अच्छा, लौकिक दृष्टि से भी थोड़ा विचार करते हैं, ये तो आध्यात्मिक दृष्टि की बात हुई। तो कोई एक विद्यार्थी को एक ज्योतिषी बताता है कि तुम इस साल परीक्षा में गोल्ड मेडलिस्ट होगे, तुम यूनिवर्सिटी को टॉप करोगे, तो ये बात सुनकर के विद्यार्थी को क्या भाव आता है? कि अब तो मैं टॉप होने ही वाला हूं, अब पढ़ने की क्या जरूरत है, अब तो आराम से सो, चलो सिनेमा देखो, नाचो गाओ, टीवी देखो। क्यों ऐसा भाव आता है? कि ऐसा भाव आता है कि मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट होने वाला हूं, मुझे मन लगाकर पढ़ना चाहिए, और साथ ही सिनेमा देखने जा रहे हैं और वो 2-2 बजे तक सिनेमा देख के आ रहे हैं, और जो 2-2 बजे तक जग रहा है, पढ़ रहा है, शाम का भोजन छोड़ दिया है, अकेले चार का ले लेकर के 3 दफे 2-2 बजे तक जग रहा, क्या होता है? कहने का मतलब यह है कि ये बात सुनकर कि ये गोल्ड मेडलिस्ट होगा, उसका और उग्र पुरुषार्थ करने का भाव जगता है। तो एक तेरा भविष्य सुनिश्चित है, ये बात का पता लगने पर पुरुषार्थ तो जागृत होगा, पुरुषार्थ समाप्त कैसे होगा? क्यों? तो कह साहब कोई कोई बता देगा तुम इस साल फेल हो गए बेटा, तो फिर बोलते फेल तो होनी, अब क्यों पढ़ू? उसका तो ऐसा हो सकता है ना? हाँ हो सकता है, हो नहीं सकता, होना चाहिए। क्यों? कि फेल होने के लिए नहीं पढ़ना ही पुरुषार्थ है। तो सही दिशा में पुरुषार्थ का पैर कहीं हुआ ना, कि जब उसका फेल होना नक्की है तो उसे पढ़ने की बुद्धि कैसे आ सकती है? क्योंकि फेल होने के लिए तो नहीं पढ़ना है पुरुषार्थ है, और पास होने के लिए, गोल्ड मेडल होने के लिए खूब पढ़ना पुरुषार्थ है। बोला कि तुम्हारे पास तो भाग्य में करोड़ों रुपए लिखा है, तो 5-10 साल के भीतर भीतर करोड़पति हो जाओगे। अब मैं करोड़पति होने वाला ही हूं, धंधा पानी करने की क्या जरूरत है? नौकरी करने, अब तो मैं कल से घर पर बैठूंगा, आराम करके दिन भर ताश खेलूंगा, ऐसा भाव आता है? नहीं, मैं तो करोड़पति बनने वाले, तो और चौगने उत्साह से कमाई करने का भाव आता है। नौकरी छोड़ के धंधे में जाओ, क्योंकि लक्ष्मी वसती व्यापार है, इस नौकरी से कैसे करोड़पति होऊंगा? तो लोक में तो हम देखते हैं कि जैसा भविष्य बताया जाता है उसका पुरुषार्थ उसी दिशा में प्रेरित होता है। क्यों? पुराणों में आपने पढ़ा होगा कि कई तरह ऐसा बताया कि तुम इसी भव से मोक्ष जाने वाले हो। क्यों? अब तो मैं मोक्ष जाने वाला ही हूं, अब दीक्षा मीक्षा लेने की क्या जरूरत है? अब भूखों मरने की क्या जरूरत है? मोक्ष तो मेरा पक्का है ही। क्यों ऐसा भाव आता है? क्यों? दीक्षा लेने का भाव आता है। मैं आपसे पूछता हूं, महावीर को नहीं मालूम था कि वे इसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं? उन्होंने कहा को 12 वर्ष पहले दीक्षा ली, 42 वर्ष की उम्र में ली ना, केवल ज्ञान होने के 12 वर्ष पहले। अरे मैं तो जाने ही वाला हूं, चला जाऊंगा क्यों? ऐसा भाव क्यों है? जाने वाले को दीक्षा लेने का भाव आता है। क्यों दीक्षा लूं? क्योंकि मैं तो जाने ही वाला हूं। उन्हें पता नहीं होगा भगत राम जी के, आपको तो पता है ना कि महावीर ही भव से मोक्ष जाने वाले थे। आदिनाथ को भी पता था कि वे महावीर के भव में मोक्ष जाएंगे, और महावीर को पता नहीं है कि मैं इस भव से मोक्ष जाऊंगा। क्यों अनंत जी नहीं, उन्हें नहीं होगा पता, उन्हें था ना पता, तो उन्हें दीक्षा लेने का भाव आया कि नहीं आया? बोलो। तो जिसका अच्छा भविष्य सुनिश्चित होता है उसे उसी दिशा में सम्यक पुरुषार्थ करने का भाव आता है, और जिसका कनी साहब मारीच को तो ये बताया था कि 24वां तीर्थंकर होगा, उसे भी तो मोक्ष जाने की बात बताई थी ना कि तू इस युग के अंत में मोक्ष जाएगा, तो उसे दीक्षा लेने का भाव क्यों नहीं आया? क्योंकि जिसका लंबा काल होता है उसे दीक्षा लेने का भाव नहीं आता है, भगवान की वाणी का विरोध करने का भाव। क्योंकि इतने काल तक संसार में रहकर रहना जिसको है, वो भगवान की वाणी का समर्थन करके नहीं रह सकता। क्यों कल मेरा कह नहीं है? देखो किसी ने उद्दंडता की तो मैं उसे कान पकड़ के निकाल दूंगा, हमारे विद्यालय में ऐसा नहीं चलेगा, ये जवाब देना मेरे को पसंद नहीं है। क्यों खड़ा हो गया? देखें कौन माई का लाल मेरे को निकालता, कौन खड़ा होगा? कौन का खड़ा? कौन खड़ा होगा? बोलो जिसका निकलने का सोकाल आ गया होगा है? और जिसका निकलने का सोकाल नहीं आया होगा वो तो चुपचाप बैठा रहेगा, वो काय को चैलेंज देने के चक्कर में खड़ा पड़ेगा। बोलो कैसा मेरा क्या हमारा अपमान कहां है? तो जो करेगा उसकी बात थी ना, तू काय को अपने माथे पर लेता है? लेकिन लेता है ना, अपने लेने अपने माथे पर लेने वाले होते हैं कि नहीं होते हैं? बोलिए आप। तो जिसका जैसा भविष्य होना होता है वो भविष्य की बात सुनकर उसका उसी जाति का पुरुषार्थ उपड़ता है। कोटा की एक सच्ची घटना है मुझे याद आ रही है, एक सूरजमल जी थे, अभी भी होंगे वो वहां है ना, अब तो रिटायर्ड हो गए हैं, पहले गवर्नमेंट सर्विस में थे वन विभाग वगैरह में, और वो युगल जी के कुछ रिश्तेदार लगते थे, युगल जी उनके फूफा जी लगते थे। क्या बहुत पुरानी बात है, 40 साल पुरानी घटना की सच्ची बात है, सच्ची घटना। जब हमारी सिद्धार्थ प्रभा 9 महीने की थी, 38 साल हो गए होंगे उसको घटना, तो बस एक किरणबद्ध पर्याय की बात सुनकर और एक दिन आकर के बैठ गए कि तुम कहते जो होना है तो होगा, देखो कैसे होता, मैं आप उठता ही नहीं हूं, मैं नहाता ही नहीं हूं, मैं ऑफिस जाता ही नहीं हूं, देखो तुम्हारी क्रमबद्ध मेरी कैसे ऑफिस ले जाती हूं। क्या क्या दादा दादा वहां थे, दादा के पड़ोस में रहते थे। तुम क्रमबद्ध क्रमबद्ध कहते हो कि जिस काल में जो होना होगा वो हो गई, अब मेरा ऑफिस जाना नक्की है ना, अब देखो मुझे कौन ऑफिस ले जाता है, तो सुबह से बिस्तर से छोड़ा ही नहीं, दातुनी नहीं करी, नहाया ही नहीं, धोया ही नहीं, नाश्ता ही नहीं किया। अब घर वालों ने बहुत समझाया लेकिन नहीं, दौड़े दौड़े जोगल जी के पास गए, कैसा उन्हें समझाओ। तो सुरेंद्र फिर बाद में जयपुर भी बहुत दिनों रहे, जोगल जी दौड़े दौड़े आए, कहिए क्या हुआ सूरज, तुझे क्या हुआ? तो भूपा जी तुम्हारी क्रिमिनल पर आए, मतलब ले जाओ मुझे ऑफिस। देखो मैंने मूर्ख तू ये बता कि तेरी आज की क्रमबद्ध में ऑफिस जाना नहीं था, ये तेरे को पता था? क्यों आज ये क्रमबद्ध में क्या था ये तुझे पता होता तो तू कहता मैंने क्रमबद्ध तोड़ दी। आज तेरा ऑफिस में जाने का नहीं था और कोई कारण दूसरा था नहीं जाने का, छुट्टी भी नहीं थी और कोई बात भी नहीं थी, तो तेरे को ऐसी उल्टी बुद्धि हुई। इसलिए आज क्रमबद्ध में बहुत लचक है, तेरे ऐसे विकल्पों से वो टूटने वाली नहीं है। क्यों इंजीनियर साहब आप भी जानते होंगे ना सूरजमल जी को, जानते हैं ना? बहुत कोटा वाले सब जानते हैं, जितने यहां होंगे सब जानते हैं, हमारे मित्र थे, यहां भी रहे बहुत दिनों तक। कुमारी के भाग्य से विवाहता मर जाती है, क्या सेवलचंद जी सुनी होगी ना, विवाहता मर जाती है क्या मतलब जी? क्या नाम? शांतिलाल जी। अरे अच्छी तरह से सब समझते हैं बुंदेलखंडी। उसका अर्थ ये है कि एक करोड़पति सेठ की शादी करोड़पति के यहां होती है। अब गरीब की लड़की को करोड़पति कहां ब्याह, करोड़पति के घर में गरीब की लड़की जाने के चांस ही नहीं है। लेकिन जितने करोड़पतियों की पहली पत्नियां मर गईं, तो उन्हें दूसरा करोड़पति तो कोई लड़की दे है नहीं। तो वो दो जा हो जाए ना, तो दूसरा करोड़पति तो कोई लड़की दे है नहीं, तो फिर वो कोई गरीब की लड़की आ गए तो वो करोड़पति को ब्याह ही जाए तो वो करोड़पति बन जाए। और वो पहले के जमाने में क्या होता था मालूम, 16 वर्ष की उम्र में शादी हो गई, 18 वर्ष की उम्र में पहला बच्चा हुआ, फर्स्ट डिलीवरी में मर गई। तो लड़का तो 18 वर्ष का 30 वर्ष का है, काय का दो जा। आज का तो एक ही 25-25 30-30 वर्ष के होते हैं। क्यों? तो बढ़िया से बढ़िया तो लड़का मिल गया और फिर द्वारा उसे कोई करोड़पति तो देगा नहीं। तो कहते थे कि वो कुंवारी के भाग्य से ब्याहता मर जाती है, ये समझ गए ना? ये भाग्य से कहो ये दो जा बड़ी पैदा, काय का भाग्य? अरे काय का दो जा, 20 वर्ष का दो जा होता है, लेकिन करोड़पति हो गया और जो कल्पना भी नहीं कर सकती थी वो। क्यों? तो उसके क्रमबद्ध में करोड़पति होना नक्की था, लेकिन इतनी सी बात थी कि वो 16 वर्ष की होगी तब करोड़पति बनेगी। क्यों? और किसी के भाग में जन्म से करोड़पति होना लिखा हो सकता, फर्क तो इतना ही है ना। ऐसे तुम इस निगाह डालोगे तो सैकड़ों करोड़पति मिल जाएंगे। जिनकी ससुराल वाले बिल्कुल सामान्य से स्थिति वाले होंगे, नौकरी कर रहे होंगे, ये कर रहे होंगे। क्यों? ये कैसे हुआ? तो उसमें मैंने बोला ना यही फैक्ट मिलेगा, ये क्रमबद्ध पर्याय का परम सत्य। क्योंकि वो तो भगवान महावीर पहले ही बता सकते थे 2500 वर्ष पहले कि ये एकदम गरीब घर में पैदा होगी और करोड़पति से ब्याह जाए। कैसे ब्याह देगा कोई करोड़पति से? क्योंकि पहले एक कोई करोड़पति की बेटी आएगी अल्पायु वाली। क्यों? अल्पायु वाली एक आएगी, वो रहेगी, वे 2 साल में मरेगी और फिर इसके बाद में नहीं जाएगा। तो हम जानते हैं बुझाया नहीं जाएगा। देने का अर्थ यह है कि ये जो सुनिश्चित क्रम है, तेरे प्रसाद की कहां बात, कहां प्रसाद के लोभ की बात आई? प्रसाद कहते किसे हैं? गुरुदेव ने तो फरमाया है कि दृष्टि का स्वभाव के सन्मुख होना ही असली पुरुषार्थ है। अपना एक ग्रंथ है, उसका नाम क्या है? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। क्या अर्थ उसका समझते हैं आप? पुरुषार्थ के द्वारा ही मुक्ति की प्राप्ति, सिद्धि का उपाय क्या है कि पुरुषार्थ। तो मोक्ष में प्रकाश के 9वें अध्याय में हेडिंग है ना, मोक्ष प्राप्त पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति संभव। पर बोलिए, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। और पुरुषार्थ माने क्या होता है? वहां लिखा उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो कहा पुरुष प्लस अर्थ, उसका नाम है पुरुषार्थ। तो पुरुष माने क्या होता है? तो उसमें लिखा है कि पुरु से तेति पुरुषः, पुरु माने आत्मनि, सेते माने सैन, जो आत्मा में सो जाए उसका नाम है पुरुषार्थ। यानी अपना उपयोग सारे जगत से हटकर
आत्मा में लग जाए इसका नाम है पुरुष। पुरुष किसे कहते हैं समझ में आया कि नहीं है? महिला होए और उसका उपयोग पर से हटके आत्मा में लग जाए तो वो पुरुष है क्या? और पुरुष हो और आत्मा की तरफ उपयोग जावे ही नहीं, आत्मा का नाम सुन के ही चिड़ छूटे तो समझ लेना वो पुरुष नहीं है। क्यों? दूसरा अर्थ लिखा है अस्ति पुरुष चिदात्मा, है ना? है ना श्लोक है क्या? नहीं कि पुरुष अस्ति, पुरुष क्या है? तो कि चिदात्मा, चैतन्य आत्मा ही पुरुष है। पुरुष माने आत्मा और अर्थ माने प्रयोजन, कि आत्मा ही है प्रयोजन जिसका, अथवा आत्मा में सोना ही है प्रयोजन जिसका, उसका नाम है पुरुषार्थ। बोलो से कहते हैं पुरुषार्थ? हम तो दौड़ धूप करने वाले को पुरुषार्थ कहते हैं। क्यों? यहां क्या कह रहे हैं कि तुम कोई काम कर रहे, दौड़ रहे, धूप रहे, हां वहां वहां वहां, कि बड़ा पुरुषार्थी आदमी है, सुबह से 5 बजे से रात के 10 बजे तक मैंने उसे चैन से बैठते कभी देखा ही नहीं है। क्यों? पुरुषार्थी है। ये कहते इस जैसा नपुंसक कोई दूसरा है ही नहीं, ऐसा कहते आचार्य। तो पुरुषार्थी कौन है? कि जो खुद तो भटकता ही नहीं है, घूमता ही नहीं है, लेकिन उपयोग को भी नहीं भरमाता है, ऐसा आलसी महापुरुषार्थी है। क्या? आंख भी नहीं खोलता है, कान से भी किसी की नहीं सुनता है। आप लोगों के सो ही गए क्यों? पीछे से हिरण खाद खुदा जाए तो ही पता नहीं चलता कि कोई ने खाद खुदाई है। क्यों? वो मोक्ष पुरुषार्थी है, वो धर्म पुरुषार्थी है, वो अर्थ पुरुषार्थी है, वो काम पुरुषार्थी है क्या? नहीं है। बोलो, मैं पूछता हूं कि भगवान महावीर को अनंत वीर माने अनंत पुरुषार्थ होता है ना, जब वो प्रकट हुआ था तब वे क्या कर रहे थे? बोलो, दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, युद्ध कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे? बोलो, देख रहे थे, सुन रहे थे, सूंघ रहे थे, चख रहे थे? क्यों? कुछ नहीं, कि ध्यान कर रहे थे कि किसका? कि अपने आत्मा का। तो वो अनंत पुरुषार्थ था कि नहीं था जिससे उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई? बोलो, एक समय आत्मा का दर्शन हो तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, और लगातार अंतर मुहूर्त तक आत्मा का दर्शन हो तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। बोलो, पुरुषार्थ क्या है? आत्मा का दर्शन के पर का दर्शन। क्या लोप हो जाएगा? मैं आपसे पूछता हूं, तुम क्रमबद्ध पर्याय को मान लेंगे तो आत्मा के दर्शन में कोई दिक्कत हो जाएगी? कि दृष्टि को कोई काम नहीं बचा, क्योंकि सब कुछ नक्की है और समय पर होगा। तो बोलो, अब तेरे ज्ञान को कोई काम नहीं बचा तो कहां जाएगी दृष्टि, कहां जाएगा ज्ञान? बोलो, जरा यहां विचार करो कि अभी आप यहां काम कर रहे हैं, सभा खत्म हो जाएगी, सब लोग चले जाएंगे, दरी भी उठ जाएगी, अब कोई काम नहीं रहेगा तो कार्यकर्ता फिर कहां जाएगा, क्या करेगा? काम रहेगा तब तक तो काम करेगा, काम रहेगा तो शहर में भागेगा, क्यों? स्टेशन भागेगा। और काम नहीं रहेगा तब क्या करेगा? तो अपने घर जाएगा, क्यों? तो अपने घर का जाने का उपाय तो कोई काम नहीं रहना है, है कि नहीं? कोई काम इस जगत में कभी ऐसा होगा कि नहीं रहेगा? हां, एक क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा आ जाएगी तो इसके माथे पर कोई काम नहीं रहेगा, तो इसका माथा अपने आत्मा में चला जाएगा और आत्मा का अनुभव। तो सम्यक पुरुषार्थ तो उपयोग का आत्मा के सन्मुख होना है, और वो जब पर से खाली हो तब, और खाली कौन कराए? क्रमबद्ध पर्याय। मैंने कहा था दो ही बातें हैं आत्मा के अनुभव में बाधक, और दो ही बातें हैं आत्मा के अनुभव में साधक। बाधक कौन है? कि वो त्रिकालिद्र भगवान आत्मा का जो स्वरूप है वो हमारे विकल्पात्मक ज्ञान में सही रूप से नहीं आया। एक तो ये है बाधक, और दूसरा काम बहुत है भगत राम जी, है ना? क्या हो गई है उम्र? 85 वर्ष तो हो गए होगी ना, क्या और ज्यादा हो गई? अभी भी बहुत काम है, समाज को सुधारना है, परिषद का गठन करना है, और बहुत गड़बड़ हो गया ना। आंख काम नहीं करती है, कान काम नहीं करते हैं, आंख पे चश्मा लग गया है, कान में मशीन लग गई है, पांव काम नहीं करते हैं, दो आदमी पकड़ के लाते हैं, पकड़ के ले जाते, लेकिन काम खत्म नहीं हुआ और काम खत्म होने वाला है। साल दो साल में खत्म हो जाएगा।
अगर भगत राम जी की बात नहीं है तो हमारे प्रेमी से उनका नाम ले दिया, बाकी सबका समझना क्यों कोमल सिंह जी, खत्म होने वाला है काम, अपने ही खत्म हो जाएंगे और काम फिर भी बाकी। अभी हमें देश को 21वीं शताब्दी में ले जाना है और 21वीं शताब्दी आते ही 22वीं शताब्दी में ले जाना है। ये काम कभी खत्म नहीं होने वाला है, खत्म होना हो तो क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा होगी, उससे ही खत्म होगा। ये दो बड़े बाधक हैं। और तो साधक क्या है कि वो तेरे को ख्याल में आ जाए त्रिकाली ध्रुव और फिर क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा हो जाए तो उपयोग वहां से खाली होगी, खटा कर यहां चला जाएगा। आपको मालूम है कि जब रामचंद्र जी का मृत्यु का झूठा समाचार लक्ष्मण को दिया देवताओं ने, तो लक्ष्मण को उसी वक्त स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास हो गया कि नरकवास हो गया आप जानो, लेकिन हो गया, देहांत हो गया। क्यों? और राम उनको 6 महीने तक कंधे पे लिए फिर रहे थे, तो अयोध्या की क्या हालत हुई होगी, समझ गए ना? सम्राट की ये हालत हो जाए और उनका परम सहयोगी मर जाए, तो उस वक्त रावण का कोई एक भांजा मांजा कोई था जिसे बहुत तकलीफ उठाई थी, तो उसने सोचा कि अब मौका है, खरदूषण का बेटा कुछ ऐसा कोई रावण का भांजा ही, अब मौका है बदला लेने का, इनसे बदला लेने का अब मौका है, तो उसने चढ़ाई करने का विचार किया अयोध्या पर बदला लेने के लिए। तो कोई दो देव थे जिनको इनने सहायता की थी, मनुष्यभव में हुए मर के देव हो गए थे, तो उन्हें ये बात पता चली कि ऐसा ऐसा हो रहा है और अयोध्या पर ये लोग लवकुश दीक्षा लेके चले गए हैं, लक्ष्मण के 8 बेटे दीक्षा लेके चले गए हैं, राम की हालत ये खराब हो गई है, लक्ष्मण मर गए हैं और ये मौका लेकर के और इस पर आक्रमण करने वाले हैं। तो दो देवता देव थे, तो उन्होंने कहा कि भाई एक काम तो तुम करोगे, जाके राम को समझाने का काम करो, एक देव को तो वहां भेजा और दूसरे देव से कहा कि तुम जाओ तो वो जो आक्रमण करने वाले हैं उनसे निपटो। एक देव ने तो क्या किया, सारी अयोध्या को अपने सैनिकों से घेर लिया, चारों तरफ से जो आक्रमण करने आए थे ना विरोधी लोग, उनको चारों तरफ से घेरा डाल दिया। और दूसरे यहां राम को समझाने आए कि तुम इसको छोड़ो, कंधे पे लिए मत फिरो, तो उस वक्त जो उन्होंने घेरा डाला चारों तरफ से, लेकिन एक तरफ से रास्ता छोड़ दिया, जगह घेरा रास्ता इतनी जगह छोड़ दी, उसमें लिखा है पद्म पुराण में, तो घेरा डालने का ये मतलब होता है जगह छोड़ दो, घेरा डालने का मतलब चारों तरफ से घेर लो। आपने देखा होगा सैनिक लोग गांधियों को घेरते करते हैं, टीवी पर तो देखा ही होगा सिनेमा में, तो चारों तरफ से घेरा डाल देते हैं ना, लेकिन उनने ऐसा घेरा डाला तो रास्ता छोड़ दिया। क्यों? तो उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वे देव कोई लड़ना थोड़ी चाहते थे, वो तो चारों तरफ घेरे का आतंक पैदा करके उनको ये बताना चाहते थे कि बेटा तुम घिर गए मरोगे, अब जान बचा के भागो। अब वो जान बचा के भागने का भाव उनके मन में पैदा होए तो रास्ता होना चाहिए ना, तो रास्ता मिले तो भाग जाए, और रास्ता नहीं मिले तो क्या होगा कि अब जो कुछ भी होगा मरेंगे जिएंगे, अब तो हम लड़के मरेंगे, चार को मार के मरेंगे, होता क्या नहीं होता? यदि पूरी तरह घेर लो तो फिर वे मरेंगे और अपन को मारेंगे, और यदि रास्ता छोड़ दो तो भाग जाएंगे, तो वो भाग गए, ख्याल में है ना? ऐसे ही जब तत्वा सूत्र लिखा गया तो सबसे पहले समझ संज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो शिष्य ने प्रश्न किया पहले से मोक्ष का मार्ग क्यों बता रहे हैं, पहले संसार के दुखों का बताओ, जैसे छेड़ाला में बताया ना चार गतियों के दुख, और संसार पूर्वक मोक्ष होता है तो पहले संसार का वर्णन करो बाद में मोक्ष का करना। उन्होंने कहा नहीं नहीं पहले मोक्ष का मार्ग बता दो और बाद में नरक के दुखों का वर्णन करेंगे चौथे अध्याय में, तो उससे क्या फायदा है कि नरक के दुखे से घबराएगा और मोक्ष का मार्ग उसे पता है ही, तो फटाफट मोक्ष के मार्ग में से भाग जाएगा। और मोक्ष का मार्ग तो बताया नहीं, वो पहले से ही दुख बताए
तो रास्ता तो दिखेगा नहीं और घबराएगा तो घबरा के बेहोश और हो जाएगा।
क्या था पहले रास्ता बताओ, पहले रास्ता छोड़ो, समझे ना। तो पहले त्रिकालीद्र भगवान आत्मा का निर्णय करो कि कहां जाना है और फिर क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप बताकर सारे कार्य से मुक्त कर दो। फिर एनियो में रिटायर्ड हो गया, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं कि समस्या खड़ी नहीं हो जाए, क्यों दूसरी नौकरी नहीं तलाश है, क्यों, समझे ना। हरित राम जी फिर रास्ता दिखा दो, ये रास्ता है त्रिकालीद्र में चला जा। राजेंद्र बहुत प्रकृति ने तुम्हारे साथ अनंत उपकार किया है। क्या कि पहले तो नौकरी से रिटायर्ड किया, अब तुम दूसरी नौकरी खोजने लगे तो हार्ट अटैक लगा दिया, क्यों मर रहे हो, मौत दिखा दी और काम करने लायक रहने नहीं दिया, अब कह दिया कि अब करो आत्मा में जाओ, कहां जाओगे, और फिर भी नहीं जाओ तो भगवान मानेंगे। तो नहीं होता तो और एक दूसरी गुलामी खोजते, एक जगह से रिटायर्ड हुई दूसरी जगह, तीसरी जगह, क्यों। धर्म तो लोग जमी करना चाहते, कुछ करने लायक नहीं रहे, पेट में कुछ पचाने लायक नहीं रहे, आंख देखने लायक नहीं रहे, कान सुनने लायक नहीं रहे, क्यों, तो पांचों इंद्रियां कुछ काम करने लायक नहीं रहे और भोगने के लायक भी नहीं रहे, तब धर्म की याद आती है। लेकिन भैया धर्म इतनी सस्ती चीज नहीं है, उसके लिए भी कुछ पुरुषार्थ चाहिए, कुछ शक्ति चाहिए, कुछ ये विधि दो चीजें हैं। क्रमबद्ध पर्याय तुम्हें सारी दुनिया से निश्चिंत करती है कि जो होना है वो ही होगा, तुम माथा मत मारो। और तो मैं क्या करूं कि त्रिकालीद्र भगवान आत्मा है उसमें चले जाओ और आराम करो, इसी का नाम पुरुष है, इसी का नाम पुरुषार्थ है। सत्य पुरुषार्थ तो ये है जो क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा से प्रकट होता है, समाप्त नहीं होता।